लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। जेरूसलम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे याद न करूं, यदि मैं जेरूसलम को अपना सर्वोत्तम आनंद न मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। प्रभु, एदोमियों को याद कर जो जेरूसलम की पराजय के दिन कहते थे, ढा दो उसे, नींव तक ढा दो। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 137वें भजन के 5वें, 6वें और 7वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 137वें भजन के 7 पदों की व्याख्या की थी। 9 पदों वाला 137वां भजन बाबुल में निर्वासित इसराइलियों का गीत है। वे दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बाबुल की नदियों के तट पर बैठकर अपने प्रिय देश इसराइल, जेरूसलम नगर और सियों पर्वत की याद कर रोते थे, किंतु उनके आतताई उन्हें शोक भी मनाने नहीं देते थे। अत्याचारियों के समक्ष भी साहसी, विचारशील और विश्वासी इसराइलियों ने ईश्वर में अपने विश्वास का परित्याग नहीं किया था। श्रोताओ, जेरूसलम नगर तहस नहस हो गया था। जेरूसलम का मंदिर पत्थरों के ढेर से अधिक और कुछ नहीं बचा था। दाऊद के वंश का नामो निशा मिट गया था, तथापि लोगों का भरोसा ईश्वर पर कम नहीं हुआ था। निर्वासन के दुख से घिरे रहने के बावजूद वे कहते हैं, जेरूसलम यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे याद न करूं, यदि मैं जेरूसलम को अपना सर्वोत्तम आनंद न मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। उनका विलक्षण, अद्भुत और अनूठा विश्वास सचमुच में असाधारण था, जो युग युगांतर तक के लोगों के लिए आदर्श है। और फिर 7वें पद में प्रभु से प्रार्थना करते हुए वे अपने चचेरे भाई एदोमियों की याद करते हैं, जो याकूब के भाई एसाव के वंश के थे, तथा जेरूसलम की पराजय के दिन कहते थे, ढा दो उसे, नींव तक ढा दो।
तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है।
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 137वें भजन के अंतिम दो पद इस प्रकार हैं। बाबुल की पुत्री, तेरा विनाश निश्चित है, धन्य है वह मनुष्य जो तेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा कि तूने हमारे साथ किया है। धन्य है वह मनुष्य जो तेरे दुधमुहे बच्चों को उठाकर चट्टान पर पटक देगा। श्रोताओ, वास्तव में 137वें भजन के ये पद कुछ विचित्र प्रतीत होते हैं, क्योंकि बाबुल के विनाश की बात तो समझ में आती है, किंतु इस खंड का आखिरी पद हमें असमंजस में डाल देता है। क्या सचमुच में ईश्वर चाहते थे कि कोई दुधमुहे बच्चों को उठाकर चट्टान पर पटक दे? क्या प्रभु ईश्वर इतने अधिक कठोर हो सकते हैं कि ऐसा होने दें? इन प्रश्नों का हमारे मनोमस्तिष्क में उठना स्वाभाविक है। जहां तक बाबुल के आतताइयों का सवाल था, वे आस पड़ोस के सभी देशों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। इस पर नबी ईसाया ने भविष्यवाणी भी की थी कि उनके कुकर्मों के परिणाम स्वरूप उनके बच्चे उनकी आंखों के समक्ष टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ईसाया के ग्रंथ के 13वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक के पद इस प्रकार हैं। उनकी आंखों के सामने ही उनके बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया जाएगा। मैं मेदियों को उनके विरुद्ध उभाड़ूंगा, जो चांदी में रुचि नहीं रखते और सोने की कामना नहीं करते। उनके धनुष युवकों को मार गिराएंगे, नवजात शिशुओं पर दया नहीं करेंगे और बच्चों पर तरस नहीं खाएंगे। बाबुल राज्यों का शिरोमणि, खलदेयों की गरिमा और गौरव सोदोम और गोमोरा की तरह ईश्वर द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। श्रोताओ, बाबुल के इस तरह के विनाश का लक्ष्य यही था कि उसकी नई पीढ़ी उत्पन्न न हो। 137वें भजन के बाबुल की पुत्री वाक्यांश आने वाले फैसले की वास्तविकता को व्यक्तिकृत करता है। पुत्री से तात्पर्य है लोगों से, यहाँ देश को नहीं बल्कि उस देश के लोगों को संबोधित किया गया है। एक बात ध्यान देने योग्य यह कि क्रूरता जैसी कोई चीज नहीं होती, क्रूर लोग होते हैं जो क्रूरता के कृत्य करते हैं। फलस्वरूप धरती को क्रूरता से मुक्त करने के लिए क्रूर लोगों का विनाश जरूरी होता है। नबी ईसाया की भविष्यवाणी एक अभिशाप के रूप में की गई थी, ऐसा अभिशाप जो एक धनुष के बाण की तरह अपना निशाना दूर तक भी दुष्ट लोगों पर लगाता है। दुर्भाग्यवश उस युग में चट्टान पर ले जाकर नन्हे मुन्हों को मार डालना युद्ध में सामान्य क्रिया हुआ करती थी। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 8वें अध्याय के 12वें पद में हम ईश भक्त एलीशा के विलाप के बारे में पढ़ते हैं। राजा बेन हदद के आदेश पर हजाइल ईश्वर भक्त एलीशा के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या राजा रोग मुक्त हो जाएंगे। इस पर एलीशा कहते हैं कि वे रोग मुक्त तो हो जाएंगे, किंतु उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहने के बाद एलीशा रोने लगते हैं। हजाइल हैरान होकर पूछता है, मेरे स्वामी रो क्यों रहे हैं? तब एलीशा उत्तर देते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इसराइलियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करोगे, तुम उनके गढ़ भस्म कर दोगे, उनके युवकों को तलवार के घाट उतार दोगे, उनके बच्चों को जमीन पर पटक दोगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डालोगे। श्रोताओ, युद्ध के समय उस युग में इस तरह की क्रूरता देखी जाती थी, और वह इसलिए कि उस युग के लोग आंख के बदले आंख के नियम पर चलते थे, जिसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी दया में परिणित कर दिया। दुर्भाग्यवश यीशु के दयावान संदेश को सुनने के बाद भी तनिक गौर करें, आज भी विश्व के कई भागों में युद्ध चल रहे हैं। प्राचीन काल में लोग आमने सामने अपने हथियारों से लड़ते थे, जबकि आज बम विस्फोटों का प्रयोग किया जा रहा है और जितनी भी विनाश की चीजों का निर्माण किया जा सके किया जा रहा है। क्या आज भी लोगों के घरों को लूटा नहीं जा रहा, बच्चों को ढाल बनाकर गोलियां नहीं चलाई जा रही। जिस प्रकार प्राचीन युग में दुधमुहे बच्चों को जमीन पर पटक दिया जाता था, उसी प्रकार आज भी बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर महिलाओं का शील हरण किया जा रहा है। मनुष्य की हैवानी आज भी जारी है। इसे समाप्त करने के लिए हम में से प्रत्येक क्या कर रहा है, यह अहम सवाल है।
तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है।
तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है।
तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभव से,
तेरे गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभव से,
तू करे उस पे दया,
तू करे उस पे दया,
तू दयालु है, तू सुजान।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 15 अक्टूबर को कैथोलिक कलीसिया यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती है। उन्हें अविला की संत तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट प्रेषित कर यीशु की संत तेरेसा की याद दिलाई और कहा, आज हम यीशु की संत तेरेसा की याद करें जो प्रार्थना के गुरु हैं। वे हमें सिखलाती हैं कि प्रार्थना उनके साथ मित्रता की अभिव्यक्ति है जो हमें सदा प्यार करते हैं। ईश्वर के साथ हमें कुछ भी बाधा अथवा भय नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ईश्वर ही पर्याप्त है। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल परिषद के सचिव एवं अल्बानो के धर्माध्यक्ष मोनसिन्योर मार्चेलो सेमेरारो को संत प्रकरण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। संत पापा फ्रांसिस ने शिक्षा पर वैश्विक समझौता के प्रतिनिधियों को एक वीडियो संदेश भेजा। उन्होंने संदेश में कहा है कि कोविड संकट ने कई मुद्दों और जरूरतों को बढ़ा दिया है और हमने उनकी पहचान की है और कई अन्य चीजों को भी उजागर किया है। स्वास्थ्य देखभाल के बारे में चिंताएं अब आर्थिक और सामाजिक चिंताओं को भी बढ़ा रही हैं, तथा दुनिया भर में शैक्षणिक प्रणालियों ने हर स्तर पर महामारी के प्रभावों को महसूस किया है। ऑनलाइन शैक्षणिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से तेजी से प्रत्युत्तर देने के लिए हर जगह प्रयास किए जा रहे हैं। इन शैक्षणिक एवं तकनीकी अवसरों ने उल्लेखनीय असमानता को प्रकाश में लाया है, जिसने हमें यह भी महसूस कराया है कि लॉकडाउन और अन्य जरूरतों के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर स्कूली शिक्षा में पीछे रह गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हालिया आंकड़ों के अनुसार करीब 10 मिलियन बच्चे कोरोना वायरस के कारण आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। संत पापा ने कहा कि इसने केवल पहले की खाई को बढ़ा दिया है। संत पापा ने सद्भाव एवं एकता की सभ्यता के लिए एक साथ बढ़ने का आह्वान किया, जिसमें फेंकने की संस्कृति की भयानक महामारी के लिए कोई जगह नहीं होगी। बुधवार को आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने वितेर्बो की ट्रैपिस्ट मठवासी धर्म बहनों का अभिवादन किया। वे एक नया मठ खोलने के लिए पुर्तगाल जाने वाली हैं। कलीसिया की माता संत मरियम मठ की मठाध्यक्षिका सिस्टर जूसी माफिनी ने कहा, इस तरह हम कई लोगों की बुलाहट की कृपा को वापस करेंगे जो हम में पल्लवित हुए हैं। आम दर्शन समारोह के अंत में सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने मठवासी धर्म बहनों की भी याद की, खासकर ऐसे समय में जब महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। संत पापा ने उन धर्म बहनों का भी अभिवादन किया जो पुर्तगाल प्रस्थान करने वाली हैं, जहां वे नए मठ की स्थापना करेंगी। संत पापा ने कहा, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम बुलाहट प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि अभी है, उसी तरह आगे भी बना रहे। नए मठ की स्थापना हेतु दो बहनों का प्रस्थान 18 अक्टूबर को होगा। अन्य धर्म बहनें उसके बाद के सप्ताहों में पुर्तगाल पहुंचेंगी। वितोर क्यानो मठ में कुल 80 धर्म बहनें हैं। सिस्टर जूसी ने कहा, हमारे पास कमरा नहीं है, जिसके कारण हम पुर्तगाल के लिए एक उपहार दे रही हैं, ताकि हम बुलाहट की समृद्धि को बहाल कर सकें। वितोर क्यानो मठ की अध्यक्षा मदर रोजारिया ने बतलाया कि 26 जनवरी को उन्होंने धर्म बहनों के एक दल का चुनाव किया जो भेजी जाने वाली हैं। नया मठ शुरू करने का प्रस्ताव एवं निमंत्रण धर्माध्यक्ष जोश कार्डेरो ने दिया है। संत पापा फ्रांसिस ने आम दर्शन समारोह के पूर्व डॉन रॉबर्टो, जिनकी हत्या 15 सितंबर को कोमो में हुई थी, उनके माता पिता से मुलाकात की। उनके साथ धर्माध्यक्ष ऑस्कर कंतोनी भी थे, जिन्होंने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि वे एक ऐसे पुरोहित थे जो सभी के प्रति स्नेह प्रकट कर सकते थे। संत पापा ने आम दर्शन समारोह में बतलाया था कि उनकी मुलाकात डॉन रॉबर्टो के वृद्ध माता पिता से हुई थी, जो एक राह के पुरोहित थे, जो वंचित, पिछले एवं बहिष्कृत लोगों से प्रेम करते थे। एक माह पहले कोमो में उनकी निर्माम हत्या ने विश्व के सामने उनकी मौन उदारता, देखभाल, चिंता और प्रेम के कार्य करने की विशेषता को उजागर किया। संत पापा ने डॉन रॉबर्टो की हत्या और उनके माता पिता के दुख की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, उन माता पिताओं के दुख उनके हैं और प्रत्येक जन जानते हैं कि उनके पुत्र को देखकर उन्हें कितना दुख हुआ होगा, जिसने गरीबों की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। जब हम किसी को सांत्वना देना चाहते हैं तो हमें शब्द नहीं मिलते, क्योंकि हम उनके दुखों को महसूस नहीं कर सकते हैं। उनके दुख उनके और उनके आंसू उनके रह जाते हैं। उसी तरह मेरा दुख मेरा और मेरे आंसू मेरे होते हैं। इसी दुख और पीड़ा के साथ हम प्रभु के पास आए। धर्माध्यक्ष कंतोने ने वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए कहा कि डॉन रॉबर्टो के पूरे परिवार से मुलाकात करने के लिए हम संत पापा के आभारी हैं। संत पापा ने डॉन रॉबर्टो के माता पिता को आशीष दी। यह एक हृदय स्पर्शी क्षण था। संत पापा ने हमें याद दिलाया कि मौत ईश प्रजा के विश्वास को पुनः जागृत करता है। हमने मुलाकात के द्वारा बहुत अधिक सांत्वना महसूस किया। हमें विश्वास और उदारता में दृढ़ता मिली है। धर्माध्यक्ष ने कहा कि संत पापा के माध्यम से पूरी कलीसिया उनके बेटे को पहचानती है, अतः उन्होंने पीड़ित लोगों के प्रति कलीसिया की कोमलता के महान चिन्ह को देखा। फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध एवं उनके रिहाई की मांग विभिन्न रूपों में जारी है। रांची की काती कलीसिया शुक्रवार को मौन मानव श्रृंखला एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी को 8 अक्टूबर की रात 8 बजे NIA के द्वारा एक साजिश के तहत भीमा कोरे गांव केस से जोड़कर गिरफ्तार किया गया। दूसरे दिन उन्हें मुंबई ले जाकर उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर कर मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है। रांची की काती कलीसिया ने शुक्रवार को मौन मानव श्रृंखला में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा, NIA ने जिस ढंग से उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाला तथा प्रताड़ित किया, हम उसकी निंदा करते हैं। इस दुखद समय में हम सभी फादर स्टैन के साथ खड़े हैं। उनका विरोध जताते और फादर स्टैन स्वामी के साथ खड़े होने को दर्शाने के लिए दिनांक 16 अक्टूबर 2020 समय 4 बजे संध्या दिन शुक्रवार को विभिन्न जगहों पर मौन रहकर मानव श्रृंखला के रूप में खड़े होंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।